ओम शांति। किसी एक देश का सम्राट चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी कोई योग्य व्यक्ति बने। वो उस प्रथा को तोड़ देना चाहता था जिसमें राजा का पुत्र ही राजा बने, और इस लक्ष्य से उसने अपने संपूर्ण राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा कि आप सबकी एक परीक्षा होगी, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही इस देश का सम्राट होगा। ढेर सारे युवक आए और राजा ने उन सभी युवकों को एक एक बीज दिया और कहा कि इस बीज को बोना, इसका ध्यान रखना, इसकी पालना करना, और एक वर्ष के बाद क्या परिणाम है वो आकर सुनाना। तो सभी नवयुवक अपने अपने घर लौटते हैं और सभी वो बीज गमले में डालते हैं, बोते हैं, और सभी अपनी अपनी तरह से उसकी पालना करते हैं। 3-4 हफ्तों के बाद ही सब अपने अपने उस पौधे की चर्चा करने लगते हैं कि पौधा कितना सुंदर है। कोई कोई कहने लगता है अब उसमें छोटे छोटे फूल भी आने लगे हैं। 4 हफ्ता, 2-3 मास, 6 मास, पर उसमें से एक युवक होता है जो रोज पानी डालता है, रोज ध्यान रखता है, रोज आकर चेक करता है क्या हुआ, परंतु उस गमले में जो बीज है वो उग ही नहीं रहा है, वो अंकुरित ही नहीं हो रहा है, परंतु फिर भी वो बड़ा ध्यानपूर्वक सावधानी से उस बीज का ध्यान रखता है और पानी डालना चालू रहता है। और जब वो ये सुनता है कि सबके बीज कैसे झाड़ बन गए, पौधे बन गए और अच्छे अच्छे फूल आ गए, उसे बड़ा दुख होता है कि ऐसे मैंने क्या गलती कर दी, क्यों मेरा जो बीज है अब तक अंकुरित नहीं हुआ। फिर भी वो जारी रखता है और 1 साल पूरा होता है और वो सारे युवक अपने अपने गमले लेकर आते और हजारों गमले रखे जाते हैं, हर एक गमले में एक एक पौधा और उसमें से बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिले हुए। और वो जो युवक होता है वो तो जाना ही नहीं चाहता था, परंतु फिर भी उसकी माँ उससे कहती है कि जाओ, क्योंकि उसे डर लगता है। और वो राजमहल में भी अपना गमला रखता है जिसमें केवल मिट्टी है और कुछ भी नहीं, और वो छुपने का प्रयत्न करता है। और राजा वो सारे गमलों को देखता है, भांति भांति के फूल, रंग बिरंगे फूल, और एक गमला ऐसा कि जिसमें कुछ भी नहीं। और राजा पूछता है ये गमला किसका है, और वो युवक छिपता है। सैनिक उसे पकड़कर बाहर सामने लाते हैं और राजा कहता है आज से तुम सबका राजा ये हुआ। क्यों क्यों राजा कहता है वो सारे बीज जो मैंने तुमको दिए थे सब उबले हुए थे, वो सारे बीज जो तुमको दिए गए थे एक भी काम का नहीं था, फिर भी हर एक के गमले में पौधे उगाए, अर्थात बेईमानी है, अर्थात झूठ है। बीज में क्षमता होती है पेड़ वृक्ष बनने की, एक विशाल दरख्त बनने की। इस क्षमता को कहा जाता है वाइटैलिटी, प्राण शक्ति, वायबिलिटी, क्षमता शक्ति या दीर्घायु होने की शक्ति या अंकुरित होने की शक्ति या जर्मिनेट होने की शक्ति। और जब तक बीज में ये शक्ति नहीं तब तक वह अंकुरित नहीं होता, पल्लवित नहीं होता, वो पौधा नहीं बनता, सैपलिंग नहीं बनता। जीवन की यात्रा भी एक वृक्ष बनने की यात्रा है, और वृक्ष के लिए सात चीजों की आवश्यकता है। उसमें से कुछ बातें बाबा ने कही है, और एक ऐसी बात कही है आठवीं जो संसार में जिसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो बीज चाहिए। यदि पेड़ का निर्माण करना है तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? बीज। दूसरा जमीन। तीसरा पानी। चौथा धूप। छठवां तापमान। सातवां ऑक्सीजन। बीच पांच छह हो गए, सातवां उस बीज की वाइटैलिटी अर्थात प्राण शक्ति। अगर वो भुना हुआ हो, यदि वो उबला हुआ हो, यदि वो खराब हो गया हो तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है, यदि व्यक्तित्व का झाड़ निर्माण करना है तो क्या चाहिए? संकल्प रूपी बीज। कैसा संकल्प हो? वो श्रेष्ठ संकल्प हो, महान संकल्प हो, क्योंकि संकल्प ही बीज है। वर्तमान जो हम हैं वो परिणाम है उस बीज का। यदि वर्तमान डिस्टर्बेंस है, यदि वर्तमान संताप है, यदि वर्तमान पीड़ा है, यदि वर्तमान मुंझा हुआ व्यक्तित्व है, यदि वर्तमान समझ नहीं आ रहा, एक प्रश्न चिन्ह है, तो जरूर बीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। बाइबल में दिखाया है ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ एक तट पर आता है, नाव में बैठता है, कुछ शिष्य नाव में और कुछ किनारे, और वो अपनी बात कहने लगता है। एक किसान था और उसने कुछ बीज बोए, पर कुछ बीज जाकर सड़क पर गिरे, कुछ बीज जाकर पत्थर पर गिरे, कुछ बीज कांटों के ऊपर गिरे और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे। तो क्या क्या परिणाम हुआ? वो बीज जो सड़क पर गिरे थे नष्ट हो गए, जो पत्थर पर गिरे थे वो उनमें से कुछ शायद पौधे बने पर वो भी बाद में नष्ट हो गए, कुछ जो कांटों पर गिरे कांटों ने उसे नष्ट कर दिया, और केवल वही बीज जो कि अच्छी भूमि पर, उर्वर भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर, फर्टाइल लैंड पर गिरे वही झाड़ बन सके। शिष्य कहते हैं कि बार बार कहानियां क्यों सुनाते हो, O Lord, why do you tell us stories and parables again and again? वो कहता है मैं कहानियां इसलिए सुनाता हूं कि अब तक मेरे से पहले जो आए उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें कही पर तुमने नहीं समझा और ये जो संसार के लोग हैं शायद नहीं समझ पाएंगे उनकी स्थिति उन बीज की तरह है जो कि सड़क पर गिरे अर्थात उन्होंने सुना परंतु सुना ही नहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म की बातें ऐसी सुनी जैसे कि वो पत्थर पर गिरी कुछ देर तक हो सकता है उनमें से कोई बीज जमीन में गया परंतु अंदर नहीं गया समा नहीं सका उस धर्म के उपदेशों को और कुछ बीज ऐसे थे जो कांटों पर गिरे अर्थात श्रेष्ठ संकल्प तो किया परंतु संसार के प्रलोभन संसार के आकर्षण और संसार के विकार ने उस श्रेष्ठ बीज को नष्ट कर दिया और वही बीज जो अच्छी भूमि पर पड़े और वो अपने शिष्यों से कहता है वो कि तुम्हारे हृदय और जो बातें मैं कह रहा हूं वो केवल तुम समझ पाओगे और कोई नहीं तो बीज की चार प्रकार की गति हमारा हृदय क्या है सड़क पत्थर या फिर कटीला जंगल या फिर वो उर्वर भूमि भगवान जो बातें रोज सुना रहा है वो एक एक बात एक एक महावाक्य बीज है कुछ दिन पहले मुरली में था भगवान नया है तो उसके महावाक्य भी नए हैं किस भूमि पर किस हृदय की भूमि पर जाकर वो गिर रहे हैं तो सात बातों में सबसे पहले बात चाहिए बीज और बीज कौन सा है संकल्प दूसरा है भूमि मन की भूमि कहो या अवचेतन मन की भूमि वो बीज मन की भूमि पर गिरे और अवचेतन मन की भूमि पर गिरे और अवचेतन मन का मार्ग अधिकांश समय बंद रहता है दो समय खुलता है सुबह सुबह और रात को सोते समय इसलिए सोते समय किस विधि से सोया जा रहा है कौन से संकल्प करते करते आत्मा सो रही है क्योंकि रात को सोते समय किया हुआ अंतिम संकल्प उठते ही पहला संकल्प बन जाता है इसके लिए क्या देखकर क्या सुनकर क्या करकर क्या लिखकर क्या सोचकर किस मुद्रा में स्थिति में आत्मा सो रही है क्योंकि सोते समय किए हुए विकारी संकल्प चेतना में ऐसे गहरे उतर जाते हैं कि दिन भर का कर्मयोग और दिन भर की का मुरली चिंतन और श्रेष्ठ संकल्प वहां नहीं पहुंच पाते जहां सोते समय किए हुए संकल्प पहुंच जाते हैं यदि चेतन मन ये है और ये अवचेतन बीच में एक पर्दा है जिसे द कर्टन ऑफ प्री कॉन्शियस कहते हैं सोते समय वो उठ जाता है इसके लिए चेतन मन से किए हुए संकल्प सीधा अवचेतन तक चले जाते हैं अवचेतन अर्थात आत्मा का सबसे गहरा तल इसलिए बीज श्रेष्ठ तो वो जो भूमि है वो भी श्रेष्ठ हो उर्वर हो उपजाऊ भूमि जो ऐसे बीजों को ग्रहण कर ले जो कि ज्ञान के है ये दूसरी बात तीसरा चाहिए पानी कौन सा पानी मुरली से आज की अटेंशन निरंतर सावधानी निरंतर जागरण, क्योंकि गलतियां तब होती है जब हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि गलतियां तब होती और गड्ढे में तब हम गिरते हैं जब जब मूर्छा आती है। मूर्छा अर्थात देहभान, जागरण अर्थात आत्माभिमान। जब जब आत्मा देहभान से ग्रसित होती है तब तब गलतियां होती है। इसके लिए श्रेष्ठ तो संकल्प कर लिया, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बाबा ने कहा संकल्प बहुत श्रेष्ठ करते हैं, संकल्प बहुत ऊंचे करते हैं, परंतु फल भी उतना नहीं हो पाते, कारण अटेंशन नहीं है। सुबह सुबह अमृत वेला संकल्प कर लिया आज ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, परंतु दिन भर उसका ध्यान कम, जागरण कम, और किसी अज्ञात मूर्छा की अवस्था में वो बीज नष्ट हो जाता है और फिर से पश्चाताप, फिर से वही चीज हो गई जो नहीं करनी थी। इसके लिए निरंतर अटेंशन, खुद खुद को ही जगा के रखना, सोने नहीं देना। बेला है जागरण की। उसके बाद है चौथा, धूप। धूप चाहिए, कौन सी? चेकिंग, रोज देखते रहना। और यह चेकिंग बड़ी सूक्ष्म है, और यह चेकिंग आंतरिक है, यह चेकिंग दिखावे की नहीं। केवल स्वयं स्वयं को देखते रहना, कल जो मैं था और आज जो मैं हूं वो कैसा है, कल जो पवित्रता थी और आज की जो पवित्रता है कैसी है, कल की जो निर्विकारी अवस्था थी और आज की जो निर्विकारी अवस्था है वो कैसी है। कल जो विश्व की सेवा की और आज जो विश्व की सेवा की एक ही स्थान पर बैठकर वो कैसी थी, मनसा कितनी शक्तिशाली थी। तो धूप चाहिए, किसकी? चेकिंग की। उसके बाद चाहिए ऑक्सीजन। ब्राह्मण जीवन का ऑक्सीजन ज्ञान मुरली है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यदि ज्ञान का चिंतन ही नहीं तो कितने भी श्रेष्ठ संकल्प करो, उस श्रेष्ठ संकल्प को दूसरे संकल्पों की संगति मिलनी चाहिए। इसके लिए ज्ञान चिंतन, ज्ञान मुरली का चिंतन, रोज की जो मुरली है उसका गहराई से चिंतन। गए लिख लिया सुन लिया, उससे थोड़ी संतुष्टता हो सकती है पर आत्मा की उन्नति नहीं। आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान का एक एक महावाक्य जब तक रगों में रुआ रुआ में न समा जाए तब तक वो स्वरूप भी नहीं बन सकता। उसके बाद है तापमान चाहिए, टेम्परेचर। किसको कहेंगे तापमान? याद को दूसरा पॉइंट रखा हुआ है अभी, कनेक्शन वाला। तापमान कैसे बनता है? व्यक्तियों के संगठन से, वाइब्रेशन से, सत संग। शायद किसी एक मुरली में ये बाबा ने कहा है तापमान की आवश्यकता है। ऐसी आत्माओं का संग जो जागृत है, ऐसी आत्माओं का संग जिन्हें समय का आभास है, ऐसी आत्माओं का संग जिन्हें पता है ये कौन सा समय चल रहा है, ऐसी आत्माओं का संग जो समय को नष्ट नहीं करती, क्योंकि इस संगम युग पर जो समय को नष्ट करेगा, समय उनको नष्ट कर देगा। सारी दिनचर्या में समय कहां जा रहा है, सारी दिनचर्या में ऐसी कौन सी बातें हम कर रहे हैं जो करनी ही नहीं है, फिर भी की जा रही है और फिर पश्चाताप भी है, परंतु दिखाना कुछ और अंतर मन में पश्चाताप। बड़ी दुखद अवस्था है ब्राह्मण आत्माओं की भी, कि वो कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते, और वो जो पता है वो श्रीमत नहीं है, जो एंटी श्रीमत है। तो तापमान, उसके बाद बताया था वाइटैलिटी ऑफ सीड, एक बीज की प्राण शक्ति, संकल्प, और जितने बीज संकल्प बाबा ने दिए हैं वो सभी अविनाशी है। इसके लिए ये बात हर एक में है, नहीं तो हर एक सीड जर्मिनेट नहीं होता है। कोई कुछ समय के बाद काम नहीं करेगा, कोई दीर्घायु होता है लॉन्जिविटी, हमेशा ही जर्मिनेट करेगा। ये बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स है, जूलॉजी के, ये सात मुख्य बात है। परंतु बाबा ने जो आज बात बताई वो कुछ और है, और जो सबसे शक्तिशाली बात है उसको छोड़ते हैं यहां पर और मुरली की शुरुआत में चलते हैं। कितने प्रकार के बच्चे देखे, किसने देखे बच्चे, भगवान कौन है, विश्व रचता है और विश्व कल्याणकारी है, और क्या कर रहा है वो, सुबह सुबह परिक्रमा कर रहा है और क्या कर रहा है, रेख देख कर रहा है और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और क्या कर रहा है, चाल देख रहा है और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, समाचार सुना रहा है, ऐसा बोला है, विश्व परिक्रमा कर रहा है। वो परिक्रमा का बड़ा महत्व है, भक्ति मार्ग में झाड़ की परिक्रमा करते हैं, नदी की परिक्रमा करते हैं, तीर्थ की परिक्रमा करते हैं, पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, भारत की परिक्रमा करते हैं, विवाह में भी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का बड़ा महत्व है, पर यह सारी परिक्रमाएं मनुष्य करते हैं, यहां कौन परिक्रमा कर रहा है, भगवान स्वयं परिक्रमा कर रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है, विश्व की परिक्रमा कर रहा है, शिव विश्व की परिक्रमा कर रहा है। हम वो गणेश है जो शिव की परिक्रमा करे, क्योंकि उसकी परिक्रमा कर लेना ही विश्व की परिक्रमा करना है, उससे योग जोड़ लेना ही संपूर्ण योग है, फिर संपूर्ण सेवा है, उससे कंबाइंड रहना। जब जब हम उससे कंबाइंड है, अपने आप सेवाएं हो रही है। प्रश्न पूछा जाता है, सकाश किस किस को दे, इसको दे या उसको दे, यहां दे या वहां दे। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था, ऐसा कांच बन जाओ, कांच जिस पर प्रकाश की किरणें गिरे और अपने आप परावर्तित, अपने आप रिफ्लेक्ट हो, जहां जिसको सकाश चाहिए अपने आप जाएगी, पर तुम्हें कांच बनना होगा। कांच अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। फिर ये ना पूछे किस किस को दू, आज इसको देनी थी वो छूट गई, लौकिक वालों को देनी थी आज तो भूल ही गया, भूकंप आया उधर ही सारा ध्यान लग गया, इधर सकाश उधर सकाश, इसको सकाश उसको सकाश। तो भगवान विश्व परिक्रमा कर रहा है, चाल देख रहा है, भगवान रेख देख देख रेख कर रहा है। सात प्रकार के बच्चे देखे, पहले अज्ञानी, अज्ञानी क्या कर रहे हैं, परेशान है। अज्ञानी क्या कर रहे हैं? अज्ञानी क्या कर रहे हैं? सीट लेने में और या दिलाने में व्यस्त है। अज्ञानी क्या कर रहे हैं? अज्ञानी क्या कर रहे हैं? अज्ञानी कुछ चाहिए, कुछ मिल जाए, कुछ बन जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, एक मुट्ठी आसमां चाहिए बस, जो सीने से लगा ले। कोई ऐसा एक जहां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां। बेचैनी अंदर, कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं, परंतु आत्मा प्यासी है, रिक्त है, खालीपन है, वैक्यूम है। ये कहना कि आत्मा है, बहुत पतित हो गई, बहुत विकारी हो गई। विकारी भी क्यों हो गई? विकारों का प्यार आत्मा में आ कैसे गया? क्योंकि आत्मा में रिक्तता है, अपूर्णता है, खालीपन है। वो बेचैनी आत्मा को विकारों की तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि दुख है, पीड़ा है, दर्द है। ऐसी दुख, पीड़ा, दर्द, बेचैनी, अनइजीनेस, अकेलेपन की अवस्था में आत्मा करे तो क्या करे? विकारों के द्वारा सुख का उपयोग उपभोग करना चाहती है, सोचती है, क्योंकि आत्मा की असली प्यास सुख की है। और जब उसे अतिंद्रिय का पता नहीं, तो इंद्रियों की तरफ आकर्षित होती है और भोग की तरफ आकर्षित होती है, और काम भोग की तरफ खींची जाती है, और उससे क्षणिक सुख मिलता है और उसमें बंध जाती है। पर सुख के तुरंत बाद ही फ्रस्ट्रेशन, दुख आ जाता है। इसलिए उसे समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। इसलिए चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ तो बन जाओ, कुछ तो मिल जाए। और जब ब्राह्मण आत्माओं में भी यह अवस्था आ जाएगी, तभी विकारों का आकर्षण होगा। जब दिनचर्या में अचानक बीच के एक घंटा खालीपन आ गया, जब दिनचर्या में अचानक बीच का एक समय ऐसा आ गया कि कुछ भी करना नहीं है, तब किसी अज्ञात वातायन से, खिड़की से, झरोके से विकारों की प्रवेशता होगी। इसके लिए ब्राह्मण अर्थात अथक सेवाधारी निरंतर अपनी दिनचर्या ऐसी रखना कि जिसमें कोई भी खाली समय नहीं है, निरंतर बिजी। एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा जो निरंतर शक्तिशाली अमृत वेला करती है, मुरली का चिंतन करती है, ट्रैफिक कंट्रोल करती है, ब्रह्मा भोजन याद में बनाती है, स्वीकार करती है, सारा दिनचर्या ठीक रखती है, ऐसी आत्माओं के जीवन में भी बीच बीच में अगर खालीपन आता है, तो वो खालीपन ही उसे घसीट कर विकारों की तरफ ले जाएगा। क्योंकि विकार भूत है, और भूत कहां रहते हैं? खंडरों में, सड़कों में, भीड़ में नहीं रहते। भूत कहां रहते हैं? कोई एक ऐसा खंडर, भूतिया बंगला, जहां पर खिड़कियां अपने आप चालू बंद होती है, चमगादड़ आता है और अजीबोगरीब आवाजें आती है, और दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर जाने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे स्थान भूतों को बहुत प्रिय है, फेवरेट। और जब हमारा हृदय भी ऐसा खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, कि अब समझ नहीं आता है करूं क्या, एक घंटा है क्या करूं, उसी फुर्सत के समय भूत प्रवेश करेंगे दरवाजे से, और दरवाजा अपने आप बंद, और तेज हवाएं चलेगी और डर लगेगा। तो सबसे पहले किसको देखा बाबा ने? अज्ञानी बच्चों को। अज्ञानी बच्चे उदास है, दुखी है, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, चाहते हैं कुछ मिल जाए, कुछ बन जाए, कुछ पालू, पर जो कुछ पाना चाहते हैं वो उसे और ही रिक्त करता है। पाने के बाद भी महात्मा की प्यास मिलन की है और वो मिलन देह में ढूंढता है और देह का वो मिलन उसे और अतृप्ति से भरता है और एडिक्शन की ओर ले जाता है। तो ये सबसे पहले बच्चे देखिए। दूसरे बच्चे ज्ञानी तो आत्मा, वो कौन है? हम। इनकी भी एक चाह है, कौन सी? कुछ करे, विशेषता स्वयं में धारण करे और विशेष आत्मा बन जाए, ये भी श्रेष्ठ संकल्प करती है। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परंतु वो सारे संकल्प पता नहीं कहां खो जाते हैं। और फिर बाबा ने यहां पर बताया कि बीज पल्लवित होने के लिए क्या चाहिए? पानी, जिसकी हमने चर्चा की, धूप, और एक ऐसी चीज चाहिए आठवीं, जो संसार में जिसकी आवश्यकता नहीं, वो कौन सी? आज की पूरी मुरली का सबसे शक्तिशाली महावाक्य, विधि क्या है? व्हाट इज द मेथडोलॉजी? बीज फलीभूत हो जाए क्या करना पड़ेगा? दो शब्दों का प्रयोग है, सदा और हर समय। जब सदा कह दिया तो हर समय कहना की आवश्यकता नहीं थी, पर एक ही वाक्य में दो शब्दों का प्रयोग है, सदा और हर समय। क्या क्या? बीज रूप बाप से शक्तियों का बल, सदा बीज रूप बाप से शक्तियों का बल हर समय किसमें भरना है? बीज में भरना है। तो जो भी श्रेष्ठ संकल्प करो उसके उसको वो प्रैक्टिकल हो जाए, उसकी विधि है उस संकल्प को अमृत वेले इमर्ज करना, परम धाम में ले जाना उस संकल्प को, और बीज से उस संकल्प में शक्ति भरना। वो कुछ भी संकल्प हो सकता है, ये विधि है। और गलती क्या करती है आत्माएं? किससे पानी लेती है और किससे सकाश लेती है, और जब जब इन दो चीजों से पानी और सकाश लेगी तब तक वो बीज नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति, आत्मा और साधन, जब श्रेष्ठ संकल्प किया जाए तो उसे गुप्त रखा जाए। तुरंत संकल्प कर दिया कि कल से हम ये करेंगे और 10 लोगों को बता दिया, उसकी शक्ति नष्ट। जब महान संकल्प किए जाए, श्रेष्ठ संकल्प किए जाए, उसकी शक्ति उसकी गोपनीयता में है, गुप्त रखे जाए। हां, ज्ञान की का अनुभव दूसरों के साथ साझा करना, शेयर करना, उसका इस यज्ञ में दूसरा महत्व है। परंतु श्रेष्ठ संकल्प जो अभी फल नहीं बना है, जो अभी झाड़ नहीं बना है, उसको तो गुप्त रीति से पानी डालते रहना, धूप देते रहना, ऑक्सीजन देते रहना, तापमान देते रहना, और बीज की रक्षा भी करनी होती है। जब पौधा छोटा होता है तो रक्षा करनी होती है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत महान योगी बन गया, देखूं तो क्या होता है। सिनेमा देखते देखते अभ्यास, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, और आत्मा आत्मा करते करते खींच लेगी वो। हाँ, जब पौधा वटवृक्ष बन जाए तो हाथी भी लगा दो, कुछ नहीं होगा फिर, पर अभी वटवृक्ष नहीं बना है, तो ध्यान रखना। तो आत्माओं का आधार लेना, साधनों का आधार लेना, बीज की यात्रा अकेले की यात्रा है और गुप्त यात्रा है। बीज के दो परिणाम हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। बीज को नष्ट होना ही है, यदि उसे झाड़ बनना है। एक है निगेटिव इफेक्ट जिसमें बीज नष्ट हो जाता है, एक है पॉजिटिव इफेक्ट जिसमें बीज नष्ट हो जाता है पर वो बीज अब दरख्त पेड़ बन गया है। बीज को तो नष्ट होना ही पड़ेगा परंतु वो बीज पेड़ बन जाए, वो जो छोटा सा संकल्प था महान संकल्प बन जाए, वो छोटा खो जाएगा फिर विशाल रह जाएगा। तो दूसरे प्रकार की आत्माएं कौन सी थी? विशेष आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं या ज्ञानी आत्माएं, जो कौन है? हम। तीसरे प्रकार की आत्माएं स्नेही आत्माएं। बाप किसको देख रहे हैं? जो स्नेही है, बहुत प्रेमी है। चौथी आत्माएं जो सहयोगी है यज्ञ में। पांचवी आत्माएं जो भगत है, उनको भी देख रहे हैं क्योंकि भगवान विश्व परिक्रमा कर रहा है तो वो सबको देखेगा। वो जो भगत जो उसे जानते नहीं परंतु भक्ति में तल्लीन है उनको भी वो देख रहा है, उन्हें भी क्या चाहिए, उनकी भी मनोकामनाएं उसे पूर्ण करनी है। छठवें प्रकार की आत्माएं तोड़ने वाली। खुद ही बाबा ने कहा विनाश के साधन बनाए हैं और बचाव के लिए भाग रहे हैं। और सातवें प्रकार की आत्माएं जोड़ने वाली। सात प्रकार की आत्माएं देखी किसने? विश्व रचयिता बाप ने, विश्व कल्याणकारी बाप ने। कब देखी? जब अमृत वेले से परिक्रमा की, खेल देखा एक जगह बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की लगन देखी एक जगह कहा। कैसे सब कुछ 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 कर रहे हैं, लगन में मगन है आत्माएं, वो सब कुछ देखा, साक्षी होकर वो देख रहा है। जैसे उसने संसार की परिक्रमा की, अब हमें क्या करना है? हमें भी अमृत वेला और नुमाश्याम के योग में इस विश्व की परिक्रमा करना है और संसार की आत्माओं को देखना है, संसार में क्या चल रहा है, रावण की क्या प्लानिंग हो रही है। संसार दुखी है, दर्द में है। फिर ब्राह्मण आत्माओं की तरफ आते हैं। तो ये एक अभ्यास अमृत वेला हरेक को करना है, विश्व का चक्कर लगाना, ग्लोब का। पांच खंड है, एक एक खंड के ऊपर जाना। यूरोप शक्ति अवरना, अमेरिका परमात्म प्रेम भर देना, अफ्रीका वैराग भरना, एशिया ऑस्ट्रेलिया। पांच खंड है, एक एक खंड के ऊपर फरिश्ता स्वरूप से जाना और कुछ कुछ दे के आना आत्माओं को। यह देना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूक्ष्म में दिया जा रहा है, यह विश्व सेवा है। फिर बाबा ने कहा कनेक्शन, आत्माओं से जोड़ने से क्या हो जाता है? कनेक्शन साधनों से जोड़ने से कुछ हो जाता है। क्या क्या होता है? कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, कभी निराश। ब्राह्मण जीवन की नाव क्या होती है? डोलती है, उत्साह कम हो जाता है, खुशी रहती है परंतु नाचने वाली खुशी नहीं है। संतुष्ट है परंतु कभी कभी असंतुष्टता की लहर है। चल रहे हैं परंतु कभी तीव्र गति कभी केवल चल रहे हैं, ये अवस्था आ जाती है। कहीं हमारी वो अवस्था तो नहीं कि ब्राह्मण जीवन में निरंतर खुशी नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ पल है खुशी के बस। ब्राह्मण जीवन में निरंतर संतुष्टता नहीं है, कई बार अज्ञात से असंतुष्टता की लहर आ जाती है। ब्राह्मण जीवन में निराशा है, नाव डोल रही है, कभी लगता है ये करूं कभी लगता है वो करूं, कभी लगता है यहां रहूं कभी लगता है वहां रहूं, कभी लगता है ये जॉब छोड़ दूं और कभी लगता है इसका ही बहुत विस्तार करूं और इसी से बाबा की सेवा करूं, क्या करूं, ये करूं या वो करूं। कभी एकदम वैराग तो कभी एकदम राग। मधुबन में आए तो संसार भूल गया, कुछ नहीं चाहिए, और उधर गए तो मधुबन भूल गया, मधुबन भी है जैसे रामायण में दिखाया है सुग्रीव, उसका भाई बाली श्री राम के हाथों मारा जाता है, जो कि उसका शत्रु है, जिसने उसे निकाल दिया था राज्य से किष्किंधा के, और राम के साथ मिलकर चुपके से राम बाण मारता है, और बाली मरते मरते अपने पाप को स्वीकार करता है और मर जाता है। पहले थोड़ा विलाप करता है, मार ही मोई ब्याद की नाई, परंतु जाते जाते कहता है कि अब सुग्रीव तुम राजा हो और मेरे अंगद को भी देख लेना, और बाली चले जाते हैं। सुग्रीव का राज्य अभिषेक होता है। सुग्रीव कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी जाकर वन में जाकर जंगलों में जाकर तपस्या करना चाहता हूं, क्या फायदा, मेरा भाई नहीं रहा, भले वो जो भी था पर था तो मेरा भाई। इतना वैराग आ जाता है। श्री राम कहते ये तुम्हारा शमशानी वैराग है। और थोड़े ही समय के बाद वर्षा का ऋतु है, 4 मास उन्हें वहीं रुकना है, सीता को नहीं ढूंढ सकते, और वो सुग्रीव जो संन्यास की बातें कर रहा था, और वो सुग्रीव जो वैराग की बातें कर रहा था, और वो सुग्रीव जिसे कुछ भी नहीं चाहिए था, राग रंग में ऐसा डूब जाता है कि 4 मास भी बीत जाते हैं, जब क्रोध में लक्ष्मण आता है तब जागता है, ऐसा ऐसी चेतना डोलती है, एकदम वैराग तो एकदम राग, बहुत ज्यादा अपवित्रता अपवित्रता आ गई तो ब्रह्मचर्य खींचता है। और ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाए तो उधर की यादें आती है, कैसी विडंबना है। इसलिए आत्मा और साधन ये आधार नहीं है बीज के फलीभूत होने का। बीज फलीभूत होगा केवल उसकी शक्ति से। हम संकल्प करते आज से ये करूंगा, आज से वो करूंगा, प्लानिंग करते सब कुछ करते हैं, पर एक चीज मिस हो जाती है, योग। उस संकल्प को बाबा के सामने इमर्ज करना और अमृत वेला उस संकल्प को बीज रूप में देखना, और वो परम बीज उसमें बल भर रहा है, ये अभ्यास। शिव बाबा के 7 स्वरूप है, डायरी में लिख के रखना, सबको पता है, परंतु काम आएंगे योग के समय अमृत वेला। सबसे पहले वो बीज है, मैं भी बीज तो वो भी बीज, उसके साथ मैं कंबाइंड हूं, और हम दोनों सारे वृक्ष को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, ये एक अभ्यास। या फिर मेरा ये संकल्प पुरुषार्थ का उस बीज के सामने है और उसमें शक्तियां भर रही है। दूसरा, शिव बाबा ज्योति है, मैं आत्मा ज्योति और वो ज्योति, हम दोनों मिल गए, एक ज्योति हो गई। तीसरा, शिव बाबा बिंदु है, वो भी बिंदु और मैं भी बिंदु, 2 बिंदु मिल गए, एक परम बिंदु और एक मैं बिंदु, और इसी में स्थित होना लंबा समय तक परम धाम में। चौथा, वो सागर है, मैं आत्मा सागर में डूबती जा रही, वो पवित्रता का सागर है, नीचे 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 पवित्रता की गहरी अतल सागर में डूब रही हूं। अगला, वो सूर्य है, मैं आत्मा उस सूर्य के सम्मुख, और सूर्य के सम्मुख मुझ आत्मा में जो विकार है, जो किचड़ा है, जो खराबी है, जो खामी है, जो फ्लॉ है, जो इम्परफेक्शन है, डिफेक्ट है, जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, जो विकर्म है, जो पाप है, जो विकार है, भस्म हो रहे हैं। अगला, वो सितारा है, और मैं भी सितारा, वो स्टार तो मैं भी स्टार, और लास्ट वो पहाड़ है स्वीट का, तो मैं भी, मैं कौन फिर चीटी क्या करने निकल पड़ी है, इस पहाड़ को खाने के लिए। ये सारे अभ्यास कहां करने हैं? परमधाम। तो बीज फलीभूत होना चाहिए, इसके लिए परमधाम में प्रवेश करना है संकल्प के साथ, और वहां पर तो निर्संकल्प अवस्था है वैसे चेतना की, पर संकल्प से प्रवेश कर फिर निर्संकल्प में प्रवेश करना। फिर बाबा ने कहा, अगर ऐसी स्थिति है संसार की, अब तुम्हें क्या करना है? यहां काम दिया है एक, कौन सा? निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनना है, क्योंकि हमें उसके लिए दो बातें करनी है। कौन सी? विघ्न विनाशक बनने के लिए दो बातें कौन सी करनी? लंबा समय का निर्विघ्न स्थिति और शक्तियों का स्टॉक भरना है, निर्विघ्न शक्तियों का स्टॉक अंदर भरना है, तो ही हम संसार की आत्माओं के विघ्नों को दूर कर सकेंगे। जो आत्मा अपने ही दुख दर्द में और अपने ही विघ्नों में डूबी हुई है, ऐसी ब्राह्मण आत्मा है जो अपनी ही पीड़ा में, अपने ही दर्द में, अपने ही दुख में है, वो संसार के दुख कैसे दूर करेगी? जहां संसार में दुख ही दुख है, दुखों के अंबार लगे हैं, इतने दुख, ढेर सारे दुख, और हम अपने ही दुखों में है, अपने ही पश्चाताप में है, अपने ही किए हुए एंटी श्रीमत पाप में डूबे हुए हैं, और हमारे जीवन में चाहे कितने भी विघ्न हो, हमें उन सब का सामना करते हुए बाहर निकलना है, पार करना है उन्हें। एक अंतिम कहानी। एक बहुत अमीर आदमी होता है जिसके पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है, और वह हर मास एक पार्टी रखता है, और उस स्विमिंग पूल में बड़े खतरनाक रेप्टाइल प्राणी हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, अजगर, और वो जब भी पार्टी होती है एक शर्त कहता है हमेशा कि जो इस स्विमिंग पूल को क्रॉस करके बताएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो इस बार भी पार्टी रखता है और सबको एकत्र करता है वहां पर, और कहता है इतना बड़ा ये स्विमिंग पूल और ये सारे खतरनाक लोग जानवर इसके अंदर, कौन इसमें छलांग लगाएगा, कौन करेगा ये काम? सब लोग तो बस देखते रहते हैं। तभी अचानक से आवाज आती है, छबाक, एक नवयुवक कूदा उसमें और पार करके निकल आया। तो सब लोग उसकी बहुत सराहना करते हैं, बहुत उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने ये कार्य कैसे कर दिया, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। वो कहता, इनाम विनाम बाद में, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने लगाया? तैरने की क्षमता उसमें थी, तैरने की क्षमता आत्मा में है, एक धक्के की आवश्यकता है, परमात्मा आया है अब इस समय कहां धक्का लगाने के लिए? विघ्नों के समंदर में, क्योंकि वो जानता है कि तुम में वो योग्यता है कि तुम उसे पार कर जाओगे। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी प्रतिभा, इतनी प्रज्ञा, इतना बल सामर्थ्य तुम में है। वैसे हम तो कभी कूदेंगे ही नहीं। किसी एक दादी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसने कही पता नहीं, बाबा विघ्न आने दो, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब विघ्न आते हैं और हम तुमको याद करते तभी तुम्हारी ज्यादा मदद मिलती है। तुम्हारी मदद का अनुभव तो विघ्नों के ही समय होता है, इसलिए आने दो। ऐसे कैसे? निर्विघ्न आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को ऐसे, संपन्न आत्माओं को ऐसे, ज्ञानी तो आत्मा आत्माओं को ऐसे, स्नेही आत्माओं को, सहयोगी आत्माओं को ऐसे ऐसे, क्या जोड़ने वाली आत्माओं को ऐसे, संसार की आत्माओं के दुख का नाश करने वाली आत्माओं को ऐसे 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 ऐसे, सदा और हर समय बीज का कनेक्शन, बीज में परम बीज से शक्तियां भरने वाली आत्माओं को ऐसे, संकल्प को फलीभूत करने वाली, संकल्प रूपी बीज को फलीभूत करने वाली आत्माओं को ऐसे 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 ऐसे, विश्व की परिक्रमा लगाने वाली आत्माओं को ऐसे, अटेंशन का पानी और चेकिंग की धूप बीज को डालने वाली आत्माओं को ऐसे, सदा संतुष्ट आत्माओं को ऐसे, हो गया ऐसे बस। हाँ, सीट पर सेट। हाँ, ये भी बात कही, वो लोग तो कुछ और चीजों में लगे, सीट लेने और देने में, और तुम लगे हो सीट पर सेट होने, ऐसे संपन्नता की सीट पर सेट होने वाली आत्माओं को। और एक चीज चाहिए बीज को, इसी मुरली में जो बात हमने अभी तक नहीं कही, बीज को दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, स्लोगन है ना, तब विजयी बनेंगे। ऐसे परिस्थिति को परिवर्तन, ऐसे फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, ऐसी डबल तकदीरवान कुमारियों को, ऐसी शिव शक्ति आत्माओं को, ऐसी शेरनी आत्माओं को, ऐसी जंगल में अकेली स्वतंत्र घूमने वाली आत्माओं को, ऐसी माया का संहार करने वाली आत्माओं को, ऐसी पक्का सौदा करने वाली आत्माओं को, ऐसी नशे वाली आत्माओं को, ऐसी कमाई करने वाली आत्माओं को, ऐसी वो सरल चित का बाद में बहुत लंबा है, ऐसी डैश 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 और ढेर सारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।